श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 19। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोदिगच्छति।
जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो वह इन तीनों गुणों से परे है, जो इन तीनों गुणों से परे है तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। 19वें अध्याय पिछला बलदेव विद्याभूषण की टीका को हम देखते हैं। वो कहते हैं कि भौतिक गुणों के संग कारण जिस प्रकार का जन्म व्यक्ति का होता है उस प्रकार की चर्चा करने के बाद, मतलब कौन व्यक्ति सतगुण के अनुसार जन्म लेता है और सतगुण का संग करने से कैसा जन्म होता है, कहां जन्म होता है, रजोगुण का संग करने से व्यक्ति, जैसे सतगुण का संग करने से व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है और या ब्रह्मलोक तक प्राप्त करता है, निर्भर करता है कि वो कितना सतगुण को विकसित किया है, और रजोगुण को संग करने से व्यक्ति मनुष्य में जन्म प्राप्त करता है, और तमोगुण का संग करने से वह जानवरों में या पेड़ों तक प्राप्त होता है। अब भगवान यह बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति, कौन व्यक्ति गुणों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि सतगुण से भी बंधन लगता है, इसलिए केवल सतगुण में स्थित रहना भी जीवन का लक्ष्य नहीं है अपितु इन गुणों से पार जा करके व्यक्ति मुक्तावस्था में आए, गुणातीत अवस्था में आए, इसके बारे में भगवान यहां बता रहे हैं। तो आत्मा को, आत्मा किस प्रकार से इन गुणों से अलग है, यह इस श्लोक में और 20वें श्लोक में बताया जाएगा, यानी 19 और 20वें श्लोक में। तो जीव जब यह देखता है, जब सही से देखने की शक्ति आती है, यदा दृष्टानुपश्यति, जब जीवात्मा में शुद्धिकरण के बाद सही से देखने की शक्ति आती है और वह देखता है कि गुणों के अतिरिक्त और कोई कार्य करने वाला नहीं है। और कैसे गुण कार्य करते हैं, गुणों के द्वारा हमारा शरीर और हमारी इंद्रियां प्रस्तुत होता है और गुण ही उस शरीर और इंद्रियों को क्रियान्वित करते हैं। और जब व्यक्ति देखता है कि आत्मा जो कि गुणों से श्रेष्ठ है वह कर्ता नहीं है तो वह इस संसार से मुक्त हो जाता है। अर्थात अहमता और ममता की भावना जब समाप्त हो जाती है कि मैं करने वाला नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं, आत्मा इस शरीर से अलग है, इंद्रियों से अलग है, जब इस प्रकार से व्यक्ति देख पाता है तो फिर व्यक्ति गुणों से मुक्त हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो शुद्ध जीव है, जो ज्ञान और आनंद से भरा हुआ है, वह दुख प्रस्तुत करने वाले कार्यों का कर्ता नहीं हो सकता, जैसे कि लड़ाई करना, यज्ञ करना इत्यादि। तो आप कहेंगे यज्ञ करना दुखी कैसे हो सकता है, क्योंकि जो कर्म कांडीय यज्ञ होते हैं उससे स्वर्ग प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं पाता है, तो अंततः गत्वा दुख का ही निर्माण करते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के बाद व्यक्ति की भोग की इच्छा भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति देखता है कि जो शरीर और इंद्रियां उसको मिला है वह गुणों के द्वारा मिला है, और इस प्रकार से समझ करके वह उन कार्यों को जो इन गुणों के द्वारा किए जाते हैं उनमें से कर्ता का भावना को हटा देता है, ये समझते हुए कि वह शुद्ध आत्मा है और ये कार्य शरीर और इंद्रियों के द्वारा किए जा रहे हैं, तो और इन कार्यों को करने का जो प्रेरणा है वो भी गुणों के द्वारा हो रही है, तो वो व्यक्ति संसार से, गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है और वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति को प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पे शब्द आया है मदभावम। उससे तो इस चीज को भगवान ने पहले भी समझाया था 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में और 13वें अध्याय के 35वें श्लोक में कि आत्मा एक्चुअली वस्तुतः कर्ता नहीं है, आत्मा तो मात्र दृष्टा के रूप में देखने वाला है। तो जो गुणों का कर्तत्व है, गुण जिस प्रकार से कार्य करा रहे हैं उसका पूरी तरह से निषेध किया गया है शुद्ध आत्मा के लिए। शुद्ध आत्मा कर्ता नहीं है लेकिन भौतिक कार्य जो है वो गुणों के द्वारा क्रियान्वित किया जाते हैं, लेकिन शुद्ध कार्यों के लिए आत्मा उत्तरदायित्व है, जैसे भक्ति के कार्य होते हैं। तो इसलिए जब ये आत्मा इस प्रकार से देखने के लिए शक्ति सक्षम हो जाता है तो इस प्रकार से वो मुक्त हो जाता है। थोड़ा प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं। समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रगति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। मतलब कि भगवान के भक्तों का संग करके वह समझे किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके व्यक्ति इन गुणों को लांघ सकता है, इस चीज को भगवान आगे भी बताएंगे। वास्तविक गुरु कृष्ण हैं और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हैं उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है। अर्थात व्यक्ति को सीखना चाहिए कौन से कार्य रजगुण में हैं, कौन से कार्य सतगुण में हैं, कौन से कार्य तमोगुण में हैं और कौन से कार्य दिव्य हैं और किन कार्यों को करके व्यक्ति इन गुणों से पार पा सकता है। अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। हाँ, एक शब्द एक इंग्लिश में सेइंग है, इफ यू डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग द प्रॉब्लम इज दैट यू विल एंड अप बीइंग देयर। अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप दिक्कत ये है कि आप उस स्थान में पहुंच जाएंगे। अर्थात अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आप पहुंच ही जाएंगे। ये बड़ी अद्भुत बात है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति अगर अज्ञान में जीवन बिताएगा तो निश्चित रूप से वो तमोगुण में ही जाएगा। तमोगुण रजोगुण का तमोगुण और रजोगुण ये तो डिफॉल्ट मोड है और इसमें जाएगा तो फिर उसके बाद अधोगति होना निश्चित है। प्रमाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति अपने भौतिक शरीर अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद्धावस्था के बारे में जान सकता है। यानी सबसे पहली बात गुरु का कार्य है, जैसे डॉक्टर बताते हैं पहले हमारा वो पैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं कि हमको बीमारी क्या है। तो जब तक व्यक्ति को यही पता नहीं हो कि बीमारी क्या है तो बीमारी को दूर करने के लिए जो नियम पालन करने की आवश्यकता होती है वो उसको क्यों करेगा। तो इसलिए गुरु बताते हैं किस प्रकार से हम लोग गुणों में बद्ध हैं, किस प्रकार से इस जगत में बद्ध हैं, कैसे हम शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं, इस प्रकार की बातें हमको बताते हैं जिसके द्वारा हमारा ज्ञान नष्ट होता है और हम भगवान की भक्ति करने के लिए उद्यत होते हैं ज्ञान के द्वारा। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। बहुत सुंदर लाइन प्रभुपाद बोल रहे हैं। देखिए अभी आपके जमाने में अगर आप किसी को बोलो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो तो लोग कहते हैं हमारे पास समय ही कहाँ है, हमारे पास समय नहीं है भगवान की भक्ति करने के लिए। तो कारण क्या है कि लोग अपनी बद्धावस्था अपनी बीमारी को समझ नहीं पा रहे हैं कि कितने बड़े कष्ट में है, किस प्रकार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हुए हैं, लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को और इस कारण से कोई प्रयास नहीं करते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए। तो अब आप एक चीज देख सकते हो कि जब व्यक्ति वैष्णव का संग करता है उसे सुनता है तो धीरे धीरे अपनी दयनीय स्थिति को वो समझ पाता है। नहीं तो प्राय लोग बोलते हैं अरे भाई हम अगले जन्म में कुत्ता भी बन गए या पेड़ बन गए तो क्या दिक्कत है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कितना दुखमय जीवन उनका इस प्रकार से उनको प्राप्त होगा। तो इसलिए उनके लिए अवकाश ही नहीं है, मतलब वो उनके पास समय ही नहीं है आध्यात्मिक जीवन के लिए, क्योंकि नीड नहीं है, कोई आवश्यकता महसूस नहीं करते। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। बहुत सुंदर बात है। जैसे कुत्ता है, एक भक्त बोल रहे थे कि अगर हम कुत्ता बन गए तो हो सकता है हमारे बहुत सारे आध्यात्मिक साक्षात्कार हों, ये मजाक की बात है, लेकिन मुंह से केवल भाव भाव बाहर आएगा। अगर हम अपने आध्यात्मिक साक्षात्कारों को का प्रचार भी करना चाहते हैं तो मुंह से केवल भाव भाव आएगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि कुत्ता बनने के बाद हमें कुत्ते की तरह ही कार्य करना पड़ेगा। पिछले जन्म में चाहे राजा भी क्यों ना रहा हो लेकिन व्यक्ति को उसी प्रकार से जानवर के शरीर में ही कार्य करना पड़ेगा, या फिर शरीर की जो है जैसे मान लीजिए पेड़ है तो पेड़ की तरह कार्य करना पड़ेगा। और इस मनुष्य जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति घोर तमगुणी है तो उसके सारे कार्य तमगुण और रजगुण से ही प्रभावित होंगे। वो सच्चे ज्ञान में स्थित नहीं है तो ऐसा लगता है कि अपने मन के अनुसार कार्य कर रहा है, मन मतलब पूरा स्वतंत्र है कार्य करने के लिए, लेकिन स्वतंत्र नहीं है, पूरी तरह बंधन में है। जैसे एक पुतली होती है, पुतले बोलते हैं, पुतला पुतली जो भी कह लीजिए, जो पुतली है वह लगता है कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि उसके पीछे अदृश्य धागे होते हैं पतले पतले जिसकी वजह से पुतली कार्य कर रही होती है। तो हम सब लोग गुणों के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होते हैं, और अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं तो ये गुण हमें एक तरफ से दूसरी तरफ खींचते रहते हैं। तमोगुण आएगा तो सुला देगा, रजोगुण आएगा तो बहुत काम कराएगा, कभी यदा कदा सत्वगुण आ गया तो व्यक्ति थोड़ा शांत होता है। तो इस प्रकार से ये गुण हमको इधर से उधर फेंकते रहेंगे और एक के बाद एक हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो यानी व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि किस प्रकार से प्रकृति के द्वारा संचालन किया जा रहा है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में कहां स्थित है। बहुत बड़ी बात है। इस संसार में हर जीव भटक रहा है और उसको प्रमाणिक वैष्णवों का संग प्राप्त हो और उसके द्वारा उनको सुनने का उनको सुनने का मौका मिले, ये तो बहुत ही रेयर है। इसी कारण से भक्तों को बताना चाहिए, इस भगवद गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि भगवत ज्ञान परंपरा में किसी को प्राप्त हो ये तो आप मान के चलिए कि असंभव असंभव ही, ऐसे बहुत रेयर है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि परंपरा में प्राप्त हो। ऐसे बहुत सारे तथाकथित आध्यात्मिक गुरु हैं जो तथाकथित आध्यात्मिक प्रगति का प्रस्तावना देते हैं। तथाकथित आध्यात्मिक प्रगति इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिसको वो आध्यात्मिक प्रगति बोलते हैं वो आध्यात्मिक प्रगति होता नहीं है। वस्तुतः उन्हें यह भी पता नहीं है कि अध्यात्म होता क्या है। क्यों? क्योंकि वो प्रमाणिक रूप से भगवद गीता प्रमाणिक वैष्णवों से गुरुओं से सुनते नहीं है। और प्रमाणिक अर्थ है भगवान से आने वाली परंपरा में उस व्यक्ति को होना चाहिए। तथाकथित परंपरा में प्राप्त वाला कहने वाला व्यक्ति भी प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है और समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। क्या स्थिति है हमारी कि हम लोग शाश्वत रूप से कृष्ण के दास हैं और एकमात्र हमारा कर्तव्य है कृष्ण को संतुष्ट करना, कृष्ण को प्रसन्न करना। तो ये बात, ये ज्ञान केवल प्रमाणिक गुरु ही दे सकते हैं क्योंकि उन्हें भी ये ज्ञान प्रमाणिक गुरु से प्राप्त हुआ है। अंततोगत्वा ये ज्ञान कृष्ण से आ रहा है जो कि जगत गुरु है, सभी गुरु वही है, आदि गुरु भगवान कृष्ण है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। अर्थात जैसे आप देखेंगे कि आजकल बहुत सारे बारात घर हो गए हैं तो रात के समय बहुत चमक धमक होती है जब शादी होती है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि जो चमक धमक है वो केवल दिखावा है और ये केवल एक रात के लिए, अगले दिन फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उसी प्रकार से अंधकार में इस प्रकार की चमक धमक दिखाई पड़ती है लेकिन जब सूर्य का प्रकाश होता है तो ये चमक धमक आकर्षित नहीं करती है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन गुणों के द्वारा प्रस्तुत जो प्रलोभन है उससे प्रभावित ना होकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में एकनिष्ठ होता है और इस प्रकार से वो गुणों से मुक्त होने के लिए प्रगतिशील हो जाता है। सातवें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण के शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथा रूप में देख सकता है उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। तो अर्थात ये है कि जो कोई भक्ति करना शुरू किया इसका अर्थ ये नहीं कि वो तुरंत गुणों से मुक्त हो जाता है। भगवान उसे गुणों से मुक्त कर देंगे लेकिन वो तुरंत मुक्त नहीं होता है। तो इसलिए अगर वो भक्ति करता रहेगा तो ऐसा हमने पढ़ा है, सुना है कि भाव के स्तर पर आने पर व्यक्ति पूरी तरह से गुणों से मुक्त हो जाता है। तो अर्थात भक्ति करते करते वो क्रमशः मुक्त होता चला जाता है, मतलब रजोगुण तमोगुण जो है वो कम होते जाते हैं, सदगुण बढ़ता जाता है और भाव के स्तर पर आकर व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध सत्व को व्यवस्थित हो जाता है। उस समय भगवान को पूरी तरह से वो समझ पाता है। तो इसलिए धीरे धीरे करके भक्ति के प्रभाव से व्यक्ति गुणों से मुक्त हो सकता है। वस्तुतः जब वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है उसी समय वो गुणों के आवरण से मुक्त है, लेकिन पूरी तरह से मुक्ति तभी होती है जब वो भाव के स्तर पर आए। तो इस प्रकार से व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि वो करता नहीं है, गुण ही करता है और गुणों के अनुसार कार्य करने की बजाय जैसा शास्त्र में अनुमोदित है, जैसा भगवान भगवद गीता में बताते हैं, उन कार्यों को करे भले ही उसको अच्छा लगे, तो इस प्रकार से वो गुणों से मुक्त हो सकता है। अन्यथा गुणों के प्रभाव में, गुणों के धक्के खाते खाते कितने जन्म इस जगत में बिताने पड़ेंगे हम उसका कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट श्लोक है 20वां। गुणानेतान्यतीत्य तीन त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में व्यक्ति स्थित हो जाता है, गुणों से मुक्त हो जाता है, तो व्यक्ति इसी जीवन में भगवान की भक्ति के प्रभाव से दिव्य सुख का अनुभव करता है। अब भगवान श्रील बलदेव विद्याभूषण कहते हैं इस श्लोक में मदभावम शब्द को समझा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भले ही आत्मा इस शरीर में स्थित रहता है लेकिन जीव को गुणों से अलग देखने की शक्ति के द्वारा वह गुणों को के प्रभाव को उसको पार पा सकता है। अर्थात जब समझेगा कि मैं गुणों से संबंधित नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, भगवान का दास हूं और भगवान की शक्ति भगवान की सेवा में लगाऊंगा अपनी शक्ति, तो गुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार से वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों से मुक्त हो जाता है और आत्मा का अनुभव करता है, भगवान की भक्ति का सुख का अनुभव करता है। तो जो मदभावम शब्द है जो भगवान ने पिछले श्लोक में इस्तेमाल किया 19वें श्लोक में, उसका अर्थ है संसार के परे चला जाएगा, अर्थात आत्मा अमृतत्व को प्राप्त करेगा या फिर भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के योग्य बन जाएगा। तो यानी कि ये जो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा शब्द है उस प्रकार से समझा जाएगा कि ब्रह्म की स्थिति प्राप्त करके शुद्ध आत्मा किसी भी चीज के लिए शोक नहीं करता है, जो कि 18वें अध्याय का श्लोक है, और किसी भी चीज के लिए अगर कुछ खो जाती है तो उसके लिए वो आकांक्षा नहीं करता है और सभी जीवों के प्रति वो समान दृष्टि से देखता है और इस स्थिति में वो प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है। तो यानी कि गुणों से मुक्त होकर के व्यक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त करने की योग्यता को प्राप्त करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का, इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। बड़ा सुंदर जगह बात एक बात प्रभुपाद बताते हैं एक जगह कि गुणों से मुक्त होने के लिए भक्त क्या करता है कि ना तो वह शरीर में रहना चाहता है और वो ना वो शरीर से मुक्त होना चाहता है, तो इस प्रकार से शरीर के प्रभावों से वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता है क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है, लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भव पास से मुक्ति का संकेत है और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। तो एक बात इंपॉर्टेंट हमें सीखनी है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते करते जितनी मात्रा में हम भक्ति में प्रगति कर लेते हैं, जितनी मात्रा में हमें प्रेम हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है, तो इसी शरीर में इन्हीं इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण की जब हम भक्ति करते हैं उससे हमें बहुत सुख प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में व्यक्ति इसी शरीर में, मतलब बाह्य शरीर तो लही लगेगा कि वो जड़ पदार्थों से बना है, लेकिन क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है इस कारण से वह भगवान की भक्ति करने में बहुत सुख का अनुभव करता है। तो ये बात हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है और भक्ति के प्रभाव से वो गुणों से मुक्त हो जाता है, तो जितनी मात्रा में गुणों से मुक्त हो जाता है, अगर पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, तो भगवान की भक्ति का सुख इस जीवन में ही अनुभव करेगा और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट और जो त्रिताप है आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक उन कष्टों से भी वो निवृत्त हो जाएगा। और इस चीज को श्रीमद् भागवत में बताया गया है तापत्रयोन उन्मीलनम, भगवत प्रेम जब हृदय में जागृत हो जाता है तो भगवान के नाम रूप गुण लीला में इतना आनंद आता है कि व्यक्ति इन दुखों को रजिस्टर ही नहीं करता है, उसको अनुभव ही नहीं होते हैं। जिस प्रकार से नारियल जब कच्चा होता है तो अपने खोल से आसक्त होता है लेकिन जैसे जैसे धूप में रखा जाता है तो धीरे धीरे वो अपने खोल से बिल्कुल अलग हो जाता है और एकदम अलग आप उसको अनुभव कर सकते हैं, सभी जानते हैं। तो सूखा नारियल की तरह भक्त अपने शरीर में तो रहता है लेकिन शरीर की आसक्ति को त्याग देता है और भगवान की भक्ति में बढ़ा चढ़ा होने के कारण आंतरिक रूप से कृष्ण भक्ति के सुख वह अनुभव करता है। अब अर्जुन पूछेंगे 21वें श्लोक में कि जो व्यक्ति गुणों से मुक्त है उसके क्या लक्षण हैं और उसको कैसे लांघता है, उसका आचरण कैसा होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्ण।